ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। चीन में रहे नेपाली विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए सरकार ने की आवश्यक तैयारी शुरू। स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाल ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री ओली ने समानता एवं समृद्धि के कार्यों को पूरा करने में मात्र नेकपा पार्टी को बताया सक्षम। एमसीसी के विरोध में आई बातों को परराष्ट्र मंत्री केवाली ने बताया अतिरंजित एवं प्रायोजित। और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बचाव और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर चीन ने दो शहरों में लोगों की आवाजाही पर लगाई प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल ने कहा कि चीन में रहे नेपाली विद्यार्थियों को वापस लाने के विषय में सरकार सजग है और इस विषय में आवश्यक तैयारी हो रही है। प्रतिनिधि सभा की आज हुई बैठक में मंत्री ढकाल ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के विषय में वक्तव्य देते हुए कहा कि चीन स्थित नेपाली दूतावास से नेपाली विद्यार्थियों को वापस लाने के विषय में काम हो रहा है और उन्हें आवश्यक चेक जांच के पश्चात नेपाल लाया जाएगा। इसी क्रम में मंत्री ढकाल ने बताया कि अब तक नेपाल में 13 लोगों की शंकास्पद परीक्षण हुई है, परन्तु किसी में भी कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं दिखा है। कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए उच्च स्तरीय निर्देशक समिति का गठन कर इस पर काम किए जाने की तथा सूचेतना मूलक कार्यक्रमों के संचालन किए जाने की भी जानकारी मंत्री ढकाल ने दी। मंत्री ढकाल ने बताया कि सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज के लिए 3 अस्पतालों और 43 शैयाओं की व्यवस्था की है और जल्द ही स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत 300 शैया के अस्पताल बनाए जाने की जानकारी मंत्री ढकाल ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि सरकार प्रेस स्वतंत्रता एवं मानवाधिकार प्रति दृढ़ है और इस पर किसी भी तरह की शंका न करने का आग्रह किया है। विभिन्न निजी क्षेत्रों के संचार माध्यमों के संपादकों के साथ आज शाम प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई विचार विमर्श के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार की तरफ से प्रेस स्वतंत्रता के विरोध में यदि कोई काम हुआ है तो उसे जल्द ही ठीक करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ओली ने संपादकों से सरकार को सहयोग करने का आग्रह करते हुए एमसीसी को इसी अधिवेशन द्वारा पारित किए जाने की बात कही। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने दी। प्रतिनिधि सभा की आज हुई बैठक में महिला तथा सामाजिक समिति की सभापति नीरु देवी पाल ने ज्येष्ठ नागरिक पहला संशोधन विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2076 पेश किया। बैठक में शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के सभापति जयपुरी घरती ने पारमाणविक विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2076 पेश किया। इसी तरह बैठक में अर्थमंत्री डॉ युवराज खतीवड़ा ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076, बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी पहला संशोधन विधेयक 2076, नेपाल राष्ट्र बैंक तीसरा संशोधन विधेयक 2076 और जमानत के कागज संबंधी पहला संशोधन विधेयक 2076 पेश किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आने वाली मार्क्सिस्ट 23 गते दोपहर 1 बजे होगी। प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा नेकपा पार्टी के अलावा और कोई भी न्याय समानता और समृद्धि के लिए उद्देश्यमूलक काम नहीं कर सकती है। अखिल नेपाल महिला संघ की एकता घोषणा तथा केंद्र समिति के पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वर्तमान सरकार ने विकास के कार्यों को तत्परता से किया है जिस वजह से आगामी चुनावों में इसे समय पर ही बहुमत मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ओली ने नेकपा के संघर्ष के द्वारा ही हरेक निकाय में 33% महिलाओं की सहभागिता स्थापित किए जाने का उल्लेख भी किया। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली ने कहा कि एमसीसी के विरोध में आए विभिन्न प्रकार की बातें अनावश्यक एवं अतिरंजित तथा प्रायोजित हैं। आज गृह जिला गुलमी पहुंचे परराष्ट्र मंत्री गेवाली ने कहा कि राष्ट्र हित, जनता के लाभ एवं देश का विकास जिसमें होगा उसी तरफ वर्तमान सरकार आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने एमसीसी के विषय में अनावश्यक भ्रम न फैलाने का आग्रह भी किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ने सड़क डिवीजन कार्यालय लहान सिरहा के निमित्त डिवीजन प्रमुख विनोद शाह सहित इंजीनियर नवीन कुमार शाह और सब इंजीनियर वीरेंद्र शाह विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुद्दा दर्ज किया है। रूपनी राजविराज कनौली सड़क आयोजना निर्माण की अंतिम बिल भुगतान के क्रम में निमित्त प्रमुख विनोद ने सेवाग्राही से 3 लाख घूस लिया था। इसी तरह इंजीनियर नवीन और सब इंजीनियर वीरेंद्र ने सेवाग्राही से 15,96,000 रूपए घूस लिया था। इसलिए इन तीनों के खिलाफ विशेष अदालत काठमांडू में मुद्दा दर्ज किए जाने की जानकारी अख्तियार ने दी है। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य प्रकाश मान सिंह ने पार्टी के अंदर उत्पन्न विवाद के समाधान करने के लिए 14वीं महाधिवेशन को तय समय पर संपन्न करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नेपाल प्रेस यूनियन पर्सा द्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में नेता सिंह ने कहा कि विधान अनुसार महाधिवेशन संपन्न करने से पार्टी के अंदर चल रही गुटबंदी को समाप्त किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय कमेटी द्वारा सार्वजनिक की गई कार्यतालिका को पूर्ण रूप से पालन कर शांतिपूर्ण और भयरहित वातावरण में 14वीं महाधिवेशन को संपन्न करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। सुर्खेत वीरेंद्र नगर 14 की फेतखोला में आज एक बोलेरो जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक की मृत्यु हो गई है, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में बरहाताल गांव पालिका 9 के 74 वर्षीय दशरथ शाही हैं। इसकी जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत के DSP रवि रावल ने दी है। घायलों का इलाज प्रदेश अस्पताल कारागांव और स्थानीय निजी अस्पतालों में हो रहा है। बता दें कि बोलेरो जीप स्थानीय खारा से वीरेंद्र नगर की तरफ जाते वक्त सड़क से करीब 15 मीटर नीचे गिरी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीन हर तरह के संभव प्रयास कर रहा है। वायरस से संक्रमित लोगों के बचाव के लिए यहां के जिम्नेजियम ऑडिटोरियम अस्पताल में बदल दिए गए हैं। यहां बेड को लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 8 दिन के रिकॉर्ड समय में 1,000 बेड का नया अस्थायी अस्पताल बनाया जा चुका है। वहां भी मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। वायरस को फैलने से बचाव और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल 2 शहरों में लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे वायरस के फैलने की संभावना कम रहे। इससे पहले रविवार को वेंगझो शहर के जेजियांग में भी स्थानीय लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रशासन की ओर से फिलहाल ताइजू शहर और हांगझोउ के 3 जिलों में एहतियात के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। चूंकि लोगों को घरों में तमाम तरह की रूटीन के सामानों की जरूरत होती है, इसको देखते हुए इन जगहों से हर घर से केवल 1 व्यक्ति को दिन में 1 बार जरूरी सामान की खरीद के लिए बाहर जाने की इजाजत दी गई है। बता दें कि चीन की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अलीबाबा का कॉर्पोरेट ऑफिस भी यहीं स्थित है। यहां लगभग 90 लाख लोग रहते हैं। चीन के हुबेई प्रांत में कोरोना वायरस से सबसे अधिक लोगों की जाने गई हैं। हुबेई से ताइजू लगभग 850 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रशासन ने इन दोनों शहरों के बीच चलने वाली ट्रेनें भी बंद कर दी हैं। अगले आदेश तक इन दोनों शहरों के बीच ट्रेन सेवाएं बंद रहेंगी। इसी के साथ ये आदेश भी जारी किए गए हैं कि लोगों को अपने घरों के कितने दरवाजे खुले रखने हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। चीन में रहे नेपाली विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए सरकार ने की आवश्यक तैयारी शुरू। स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाल ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री ओली ने समानता एवं समृद्धि के कार्यों को पूरा करने में मात्र नेकपा पार्टी को बताया सक्षम। एमसीसी के विरोध में आई बातों को पराष्ट्र मंत्री गिवाली ने बताया अतिरंजित एवं प्रायोजित। और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बचाव और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर चीन ने 2 शहरों में लोगों की आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।